स्वागत। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं।
जी
पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन है, भगवान शंकर क्या है।
हाँ, बहुत ही गूढ़ विषय है ये।
बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि गुरुदेव के नजरिए से समझें कि भगवान शंकर का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनके प्रतीकों का मतलब क्या है।
जी, और गुरुदेव ने तो ये भी बताया ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस शुरू करने से पहले ही भवानी और शंकर की वंदना की।
हाँ, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
बिल्कुल, श्रद्धा और विश्वास। कहते इनके बिना तो सिद्ध पुरुष भी ईश्वर को मतलब पा नहीं सकते।
सही बात है। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है जो गुरुदेव ने भी उठाया है कि क्या हम वाकई शंकर जी को समझते हैं।
हाँ, ये बड़ा प्रश्न है।
इतनी पूजा, इतनी आराधना होती है, फिर भी जीवन में समस्याएं क्यों हैं? कहीं कुछ समझने में कमी तो नहीं?
यही बात गुरुदेव कहते हैं कि चूक हमारे समझने में है। हमने क्या किया है कि सिर्फ बहिरंग स्वरूप पकड़ लिया है।
बहिरंग मतलब?
जैसे मूर्ति पूजा, कर्म कांड।
हाँ, मूर्ति पूजा, जल चढ़ाना, बेलपत्र, आरती, ये सब। लेकिन जो अंतरंग स्वरूप है, उनका तत्व ज्ञान, उनका दर्शन, वो छूट लिया है।
और शायद वही असली खजाना है।
बिल्कुल, वही तो है जिसे समझने की जरूरत है। तो चलिए आज इसी अंतरंग स्वरूप को, इसी तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव शिव के तत्व ज्ञान के बारे में क्या खास बताते हैं?
देखिए, गुरुदेव सृष्टि की तीन प्रक्रियाओं की बात करते हैं।
हाँ।
उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन।
ब्रह्मा विष्णु महेश।
जी, ब्रह्मा यानी उत्पादन, विष्णु यानी पालन या अभिवर्धन, और शिव यानी परिवर्तन। वो स्थिरता के नहीं, गतिशीलता के देवता हैं।
परिवर्तन मतलब बदलाव?
हाँ, निरंतर बदलाव। वो सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं, पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है, ऐसा समझें।
और उनकी जो गोल पिंडी है,
हाँ,
उसका क्या अर्थ है?
वो इसी विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। देखिए ना, अणु से लेकर ग्रह तक सब गोल हैं।
हाँ, ये तो है।
तो पिंडी हमें याद दिलाती है कि ये पूरा विश्व ही ईश्वर का रूप है। सबके साथ कल्याण का व्यवहार करो, विश्व दृष्टि रखो।
विश्व दृष्टि, ये बहुत अहम है। अच्छा, और उनका वो रूप, शमशान में रहना, शरीर पे भस्म लगाना, ये थोड़ा मतलब भयभीत करने वाला भी लगता है।
भयभीत नहीं, बल्कि भय मुक्त करने वाला। गुरुदेव समझाते हैं कि शमशान और भस्म मृत्यु के सत्य का बोध कराते हैं।
मृत्यु का सत्य?
हाँ, जो इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन के उतार चढ़ाव से, मान अपमान से, भय से मुक्त हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है।
और भस्म?
भस्म वैराग्य है, समत्व है। राजा हो या रंक, सबका अंतिम स्वरूप तो यही है, राख।
सही। और वो मुंडों की माला, वो भी इसी तरफ इशारा करती है?
जी बिल्कुल। ये चेहरे, ये सुंदरता, सब क्षणभंगुर है। माला याद दिलाती है कि सबकी अंतिम परिणति एक सी है, तो भेद कैसा, समत्व भाव रखो।
वैराग्य और समत्व। पर शिव सिर्फ वैरागी तो नहीं है, वो शक्तिशाली भी हैं। बाघ का चर्म पहनते हैं।
हाँ, बाघम्बर, वो साहस का प्रतीक है, पौरुष का। जीवन में जो अनिष्ट है, जो चुनौतियां हैं, उन पर विजय पाने की शक्ति का। जैसे बाघ को वश में किया, वैसे ही मुश्किलों को जीतो।
और इसी शक्ति का एक और रूप है उनका नीलकंठ होना, विष पीना।
विष पीना नहीं, बल्कि उसे कंठ में धारण करना। ये बहुत बहुत गहरा प्रतीक है।
समझाइए थोड़ा।
गुरुदेव कहते हैं ये संसार का विष है, अपमान, निंदा, कटुता, दुख। शिव इस विष को ना तो पीते हैं कि खुद नष्ट हो जाए, न उगलते हैं कि संसार में फैले।
तो क्या करते हैं?
उसे कंठ में रोक लेते हैं, नियंत्रित करते हैं, और फिर भी लोक कल्याण में लगे रहते हैं। ये भावनात्मक स्थिरता है, सहनशीलता है, अद्भुत शिक्षा है ये।
वाकई आज के समय में तो ये बहुत ही जरूरी शिक्षा है। अच्छा, उनके साथ हमेशा एक वृषभ मतलब बैल होता है?
और उनकी बारात में भूतपलित होते हैं।
हाँ,
वृषभ यानी नंदी, वो शक्ति का, परिश्रम का और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, जो कर्मठ है।
और भूतपलित?
उस समाज के सबसे पिछड़े, गिरे हुए, उपेक्षित लोग हैं। शिव उन्हें भी अपने साथ लेके चलते, किसी को छोड़ते नहीं। ये समावेश का, सबको साथ लेके चलने का संदेश है।
समावेश और आत्मनिर्भरता, बहुत सुंदर। और उनके तीन नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा।
तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान चक्षु, विवेक। वो विवेक जो कामदेव जैसे प्रबल विकार को भी भस्म कर सकता है।
अच्छा।
चंद्रमा मन की शांति, शीतलता, संतुलन का प्रतीक है, और पूर्ण ज्ञान का भी।
और गंगा?
गंगा है ज्ञान की प्रचंड धारा, उसे धारण करने के लिए शिव जैसा संकल्प चाहिए। वो उसे अपनी जटाओं में रोकते हैं ताकि वो धीरे धीरे लोक कल्याण के लिए बहे, विनाश न करे।
ज्ञान, विवेक, शांति, संतुलन, अद्भुत। उनके शस्त्रों का भी जिक्र आता है, त्रिशूल और डमरू।
जी, त्रिशूल तीन गुणों सत्व, रज, तम पर नियंत्रण का प्रतीक है, या कहें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। ये लोभ, मोह, अहंकार जैसे बंधनों को काटता है।
और डमरू?
उससे तो ध्वनि निकलती है। हाँ, वो सृजन का नाद है, ज्ञान की, कला की, साहित्य की, विजय की ध्वनि, कल्याणकारी विचारों का नाद।
गुरुदेव ने उनके प्रिय आहार भांग के बारे में भी कुछ बताया है।
और उनका पशुपति नाम?
हाँ,
वो स्पष्ट करते हैं कि भांग का मतलब वो नशा वाला पदार्थ नहीं, भांग मतलब भंग करना, विच्छेद करना।
किस चीज का विच्छेद?
माया का, अज्ञान का, स्वार्थ का, हमारे अंदर के कषाय कल्मशों का, उनका नाश करना ही शिव को प्रिय है। और पशुपति मतलब पशुओं के पति या स्वामी।
हाँ,
यहाँ पशु मतलब हमारे अंदर की पशुता, हमारी दुर्भावनाएं, हमारी बुरी आदतें, शिव उन पर नियंत्रण करने वाले हैं।
ये तो बहुत ही अलग और गहरा अर्थ है। और सबसे शायद चकित करने वाली बात, वो गृहस्थ होकर भी परम योगी हैं।
यही तो शिव का कमाल है। वो गृहस्थ है, परिवार है, पर है पूर्ण योगी, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, अपनी पत्नी पार्वती जी को भी मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं।
इसका क्या संदेश है?
संदेश साफ है कि आत्म कल्याण के लिए, योग साधना के लिए घर छोड़ना ही जरूरी नहीं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी ये सब संभव है, अगर दृष्टि सही हो, संकल्प दृढ़ हो।
तो फिर गुरुदेव के हिसाब से शिव की सच्ची पूजा क्या हुई? क्या बस जल चढ़ाना, बेलपत चढ़ाना, आरती करना काफी है?
बिल्कुल नहीं। गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं, कहते हैं ये बाहरी चीजें, ये उपचार ठीक है, पर ये पर्याप्त नहीं है।
तो फिर क्या है सच्ची उपासना?
सच्ची उपासना है शिव के इन सारे प्रतीकों के पीछे जो गहरा दर्शन है, जो तत्व ज्ञान है, उसे समझना। और सिर्फ समझना नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना।
जीवन में उतारना?
जी, वही सच्ची शिव पूजा है। शिवरात्रि भी क्या है? वो कल्याणकारी रात्रि जिसमें हमारी आत्मा परमात्मा के पास महसूस करे, हमारे अंदर शुभ विचारों का जागरण हो।
बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पूज्य गुरुदेव के अनुसार भगवान शंकर सिर्फ एक मूर्ति या कुछ कर्मकांड नहीं है।
नहीं, वो तो जीवन जीने की एक पूरी कला है, एक गहरा दर्शन है।
उनका हर एक प्रतीक, चाहे वो भस्म हो, त्रिशूल हो, नीलकंठ हो, डमरू हो, सब हमें जीवन, मृत्यु, समाज, आत्मविकास के बारे में सिखा रहा है।
एकदम सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है।
हाँ, कल्याण।
तो सच्ची शिव भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रह सकती, वो हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में कल्याण की भावना लाने से ही पूरी होती है।
तो अंत में हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है कि पूज्य गुरुदेव ने जो ये गहरे संदेश बताए हैं शिव प्रतीकों के माध्यम से, खासकर ये कल्याण की भावना
जी,
इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे जी सकते हैं?